समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लवली निगम और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुज्तबा। सायरा नमस्कार। और आज 10th के और 12th के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो जो बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए उन सबको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। जिनको उम्मीद से थोड़े कम नंबर आए हैं उनको कहेंगे कि मंजिलें और भी हैं, निराश ना हो।
बिल्कुल, नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड एज हैव बीन रियली पॉइंटेड आउट दैट दिल मायूस ना करें, आगे आसमान और भी है। अभी तो बस कह सकते हैं क्योंकि ये पहला पड़ाव है,
पहली सीढ़ी होती है,
पहली सीढ़ी है। एंड 10th एंड 12th एग्जाम्स, एंड इनफैक्ट हम लोग के लिए कितनी बड़ी एक बैटल होता था, लेकिन आप जब एक बार आप करियर करना चाहते हैं, नोबडी इवन आस्क कि बाकी
कितने परसेंटेज।
सो इसलिए जिनके कम मार्क्स आए हैं आप बिल्कुल भी मायूस ना हो, बिकॉज ऑफकोर्स देर आर मोर स्काइज टू कॉन्कर अहेड। ऑन दैट पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट आवर शो विद द हेडलाइंस।
लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी, दोपहर 1 बजे तक 40% से अधिक मतदान की खबर है।
पोलिंग ऑल्सो अंडरवे फॉर असेंबली इलेक्शंस इन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा।
लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए प्रचार जोरों पर, प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने बिहार में कई रैलियां की।
सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेज इंटरिम बेल टू फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन।
सीबीएसई ने कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किए, लड़कियों ने फिर बाजी मारी।
And in IPL cricket, Gujarat Titans to lock horns with Kolkata Knight Riders in Ahmedabad this evening. And now it's time for Dateline India. और जाहिर सी बात है, जब हम लोग बात कर रहे थे 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स की, तो आज का Dateline India is also about CBSE results. And yes, CBSE today declared results of classes 10 and 12. According to the board, girls have again outshined boys in board exams with 87.98% students passing the test. The board informed that 91.52% girls cleared the exam, 6.4 percentage points higher than boys' pass percentage. A total of 24,068 students have scored above 95% marks, while 116,145 students have scored above 90%.
और 1,22,000 से ज्यादा छात्रों को कंपार्टमेंट में रखा गया है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले में मामूली कमी देखी गई है। अधिकारियों ने कहा कि इस साल यह संख्या पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम है। अधिकारियों ने बताया कि 91.52% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 6.40% ज्यादा है। इस बार 7,126 केंद्रों पर आयोजित की गई परीक्षा में 16,00,000 से ज्यादा उम्मीदवार बच्चे शामिल हुए। सीबीएसई बोर्ड सीनियर सेकेंडरी की तरह ही सेकेंडरी के नतीजों की भी घोषणा के बाद परिणाम देखने के लिए लिंक को आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल cbseresults.nisa.in पर एक्टिव किया है। स्टूडेंट्स को इस लिंक पर क्लिक करना होगा, फिर नए पेज पर अपना रोल नंबर और स्कूल नंबर की डिटेल भरकर सबमिट करना होगा और इसके बाद स्टूडेंट्स अपने परिणाम सीबीएसई बोर्ड 10th रिजल्ट 2024 और विषयवार प्राप्तांक मार्क्स स्क्रीन पर देख सकेंगे।
एंड लेट्स टेल आवर लिसनर्स दैट त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट हैज अचीव्ड द हाईएस्ट पास परसेंटेज विद 99.91%, व्हाइल प्रयागराज रैंक्ड लोएस्ट विद 78.25%। Vijayawada has second highest pass percentage of 99.04%, followed by Chennai with 98.47%. below is state wise pass percentage. Well, this was the pass percentage that I gave for these places. Mm-hmm. And the next steps after completing CBSE board exams, of course, are decided by the students themselves, Lavleen. So, hum log apne show ke zariye ye kehna chahenge parents se bhi ki bilkul bhi force na kare apne bacche ko kisi bhi particular field mein jaane ke liye jahan unka rujhan ho. I think it's better to follow your passion. And लेकिन ऑफ कोर्स कई बार ये होता है दैट यू नो फॉर एग्जांपल मेरा पहला प्यार है लिखना बट वी ऑल नो इन इंडिया सैडली राइटिंग डजंट पे ऑफ दैट मच इनिशियली तो बेटर है कि आप हमेशा एक प्लान बी रखें जिसमें आपकी रोजी रोटी का भी इंतजाम रहे
हॉबी आपकी अलग है yes. लेकिन अपना yes.
और उससे बेटर कुछ नहीं होता अगर आपकी हॉबी आपका जो है इतना ज्यादा इनकम जनरेट करे बट इफ दैट टेक्स टाइम ऑलवेज हैव अ प्लान बी
जी और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है शुरुआत हम छत्तीसगढ़ से करते हैं बल्कि उससे पहले शायद कुछ बच्चों का है भी है हमारे पास रिएक्शंस कि वो कितने खुश हैं दसवीं या बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं के बाद तो सब पहले उन्हीं के रिएक्शन सुन लेते हैं
बिल्कुल आई स्कोर 97.2% इन क्लास 12th बोर्ड एंड आई फील वेरी नाइस अबाउट इट माई हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ सो आई फील वेरी नाइस अबाउट दैट
तो चलिए अब हम बात कर रहे थे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने की उनके पास क्या विशेष है आज सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं सायरा छत्तीसगढ़ में एक गुफा ऐसी है जिसे साल में सिर्फ एक ही दिन खोला जाता है और जाहिर तौर पे जब साल में एक ही दिन खोला जाता है तो दूर दूर से पर्यटक वहां आते हैं उसको देखने के लिए क्या कुछ खास है उसमें जानते हैं अपने सहयोगी विकल्प शुक्ल से
छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में मंडी खोल नाम की एक गुफा है यह गुफा छुई खदान विकास खंड के ठाकुर टोला गांव के पास घने जंगलों में है गुफा में एक शिवलिंग स्थित है इसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी गुफा माना जाता है इस गुफा को हर साल अक्षय तृतीया के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार को पर्यटकों के लिए खोला जाता है आज इस गुफा को लोगों के लिए खोला गया है यहाँ बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु और पर्यटक पहुँचते हैं गुफा तक पहुँचने के लिए नदी को भी पार करना पड़ता है यह गुफा काफी गहरी है और उसकी लंबाई को नापना काफी मुश्किल माना गया है यहाँ दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालु एक रात पहले से ही गुफा के बाहर डेरा डाल लेते हैं यह गुफा शिव भक्तों के साथ ही विचित्र भौगोलिक स्थानों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला
And from Raipur, we now head towards Manipur, which is a very small state of India, yet it is inhabited by many, many different tribes. Therefore, not a single month passes without a festival in the state. And with the monsoon season not so far away, festivals related to crop plantations are already kicking off in Manipur. The traditional paddy transplantation festival for Pomai tribe of Manipur, Pauki, kicked off from Saturday in Senapati district of Manipur. We have more details from our Imphal correspondent JJ Fokcham.
The traditional paddy transplantation festival Pauki is a festival of Pongmai tribe who inhabited in Senapati district of Manipur and is usually celebrated in May every year. This tourism festival of Manipur was celebrated from Wednesday to Friday last week at Purul village of Senapati district. On the first day of the festival, animals were butchered and prepared for the feast for all villagers which is known as Ranayu which means butchering day. On this day, a minimum of 50 to 70 kgs of meat and fish are prepared for the festival by every household of Pongmai tribe to offer meals to relatives and friends who have arrived to join the beginning of the festival. Taupayu, which is plucking or gathering of the sapling for the transplantation, is conducted on the second day. On this day, villagers go to the sapling lawn to gather the paddy sapling for the next big day of transplantation. At night, the Naga wrestling competition takes place in the courtyard of the village chief of Pongmai tribe. The most important day of the festival is the third day which is celebrated as Khanayu. On this last day of the festival, almost all the entire fields were planted and every villager joined the festival. Male and female visited from fields to fields and paddy transplantation continued till late evening on this day. Speaking to Akashwani News Parikrama, a villager who participated in the festival said that Pauki festival is a festival praying to Almighty God for good crop crop yield, and since the festival has completed now, all villagers are busy in paddy fields. He said,
I am Hekini from Senapati. As the festival is over, now everyone is busy in their field works. Relatives coming for the festival has left for their home. It was a pleasant trip to Purul and an amazing experience to be part of the Pauki festival. The hospitality of the villagers was awesome. Food and beverages were very local yet well served. Now that the plantation is going on, it is the wishes and prayers of the cultivators for a bountiful harvest. Till the next Pauki festival, the experience of this year's festival will linger in sweet memories.
This year, the festival was sponsored by Manipur Tourism Department and announced that the Pauki festival is a part of Tourism Festival of Manipur. During the 3 days long festival, competition among youths in various events of indigenous games and sports were also held. JJ Thoksom, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
और सायरा गर्मी में बहुत से फल होते हैं, खरबूजा है, तरबूज है, खीरा ककड़ी भी खाए जाते हैं, लेकिन आम का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। सभी फलों का राजा है,
बिल्कुल, द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स इज मैंगो।
तो आम सभी लोगों का पसंदीदा फल है जो गर्मी के मौसम में पकता है। अगर हम गुजरात में कच्छ की ओर जाएं तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक सूखा प्रदेश है, लेकिन इस सूखे प्रदेश की परिभाषा यहां के किसान ने बदल दी है। अब इस क्षेत्र में कई बागवान फसलें उगाई जाती हैं और उनकी खेती भी बहुतायत में की जाती है। कच्छ केसर आम का मुख्य उत्पादक है। गर्मी के मौसम में पकने वाले केसर आम की मांग अब विदेशों में भी होने लगी है। कच्छ से भारी मात्रा में केसर आम का निर्यात किया जाता है। तो इसी बारे में और जानकारी लेते हैं हम हमारे सहयोगी भुज से, भरत देवमणि से।
गर्मी की शुरुआत के साथ ही फलों के राजा आम का किसानों को इंतजार रहता है। चालू वर्ष में कच्छ जिले में 11,750 हेक्टेयर में आम के पौधे लगाए गए हैं। हालांकि पिछले वर्ष आए बिपरजोय तूफान और वर्तमान में हुई बेमौसम बारिश के कारण इस वर्ष जिले में आम का उत्पादन 10-15% कम हो जाएगा। उद्यान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष 11,750 हेक्टेयर में आम के पौधे लगाए गए हैं। पिछले कई सालों से आम की खेती कर रहे किसान हरेश ठक्कर ने बताया कि कच्छ के केसर आम की मांग विदेशों में काफी अच्छी है। एक समय था जब कच्छ में आम नहीं पकते थे, लेकिन अब आलम यह है कि यहाँ आम प्रचुर मात्रा में पैदा होते हैं और विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। अगर केसर आम को GI टैग मिल जाता है तो इससे काफी फायदा होगा।
हम लोग हाई जनरेशन से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसमें मैंगो भी कर रहे हैं और अनेक क्रॉप कर रहे हैं। तो जो मैंगो है ये साल हमारे को जो जून 15, 2023 को साइक्लोन आया तो उसके वजह से पूरा पेड़ हिल गया। इस वजह से ये साल में हमारे कच्छ के मैंगो 30% से 40% नहीं बचा। बाकी कुमोसी की बरसात जो बीच में गिरा, जाकर का पानी गिरा मार्च महीने में, तो उस वजह से माल हमारा कच्छ में ड्रॉपिंग हो गया। और कच्छ केसर मैंगो ऐसा है जो खाने वाले लोग है वो कच्छ केसर मैंगो को इंतजार करके बैठे रहते है कि कच्छ की मैंगो कब शुरू होती है। टेस्ट वाइज, कलर वाइज, शुगर वाइज सब कुछ बेस्ट। आज की परिस्थिति वो खड़ी हो गई कि ये मैंगो है देश नहीं मगर विदेशों में भी इस केसर मैंगो की इतनी ही डिमांड आ गई। आज के हिसाब से मैं अंदाजित आपको बोलूं तो 20,000 एकड़ में कच्छ केसर मैंगो हो रहा है।
पिछले साल जून में आए चक्रवात के कारण कच्छ के कुछ इलाकों में आम के बागों को नुकसान पहुंचा था, फिर भी बेमौसम बारिश के कारण आम के पेड़ों में फंगस लग गया। इससे आम के बौर और फसल को नुकसान हुआ है। पेड़ों की जड़ें हिल गई और कुछ पेड़ गिर गए। हालांकि सरकार ने इस पेड़ों को दोबारा लगाने के लिए सहायता प्रदान की है। परेश मारू के साथ मैं भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, भुज।
और देश की परिक्रमा में जब हम लोग निकले हैं तो ऑफकोर्स नवीन चुनावी सरगर्मियां तो अपने उरूज पे हैं। हाउ कैन वी लीव ए न्यूज फ्रॉम द इलेक्शन
बिहाइंड? मतदान हो रहा है,
यस, एंड वोटिंग इज ऑल्सो अंडर वे इन 7,303 पोलिंग बूथ्स इन ओडिशा, कालाहांडी, कोरापुट, नवरंगपुर, बिरहामपुर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी एंड 28 असेंबली सीट्स एज वेल। The state chief electoral office expects a staggering 62,87,000 voters to exercise their franchise in today's poll. So we have more details from our correspondent Alok Chandra.
In the first phase, polling for 4 Lok Sabha and 28 assembly seats across 9 districts in Odisha started this morning. Among the 4 Lok Sabha constituencies, Kalahandi has the highest number of over 17 lakhs voters, while the Koraput segment has the lowest number above 14,81,000 voters. Among the 28 assembly segments, Dharmagarh constituency in Kalahandi district has the highest number of above 2,62,000 voters. In contrast, the Lakhimpur seat in the Koraput district has the lowest with around 1,74,000 voters. Police sources said that 17,000 platoon police forces, 104 companies of paramilitary forces and 100 mobile squads have been deployed across various polling booths during this phase of elections. Security arrangements have been enhanced in the Mao-affected areas of Malkangir, Koraput, Nabarangpur, Nuapada and Kalahandi districts. Additionally, flying squads and static surveillance teams have been in place to prevent bogus voters. The other 3 phases of polling will be done at different intervals till the 1st of next month. The counting of votes will take place on the 4th of June. For Parikrama, this is Alok Chandra Bari from Akashwani, Sambalpur.
और सायरा अब निकलते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सैर पर और आज के दिन क्या विशेष घटनाएं घटी उसकी जानकारी लेते हैं।
आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 13 मई 1905 को नई दिल्ली में हुआ था। 1925 में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात के बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए और स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और 3.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया।
स्वतंत्रता के बाद फखरुद्दीन 1952 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद वे असम सरकार के महाधिवक्ता बने और फिर 2 बार असम विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे 1967 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद 1971 में वे फिर लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने खाद्य और कृषि, सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून से संबंधित विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली।
फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। इस पद पर रहते हुए जब वो नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो अचानक गिर पड़े और 11 फरवरी 1977 को उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी की तरफ से महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन।
आज हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी वी आर कृष्णन अच्युतचंद को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 13 मई 2004 को हुआ था। मलयालम और अंग्रेजी भाषा के प्रतिभावान लेखक कृष्णन कोचीन स्टेट प्रजा मंडलम के संस्थापक महासचिव थे। ये भारत की स्वतंत्रता से पहले कोचीन रियासत में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक इकाई थी। वे दीनबंधु समाचार पत्र के संस्थापक संपादक भी थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सही अर्थों में अपने क्षेत्र में जन जन की पार्टी बना दिया था।
वी आर कृष्णन अच्युतचंद का जन्म 25 अप्रैल 1909 को त्रिशूर के अविनिश्चेरी में हुआ। वो 1925 में त्रिशूर में महात्मा गांधी के साथ बैठक के उपरांत स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। कोचीन के राजा की संप्रभुता समाप्त करने और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से 9 फरवरी 1941 को प्रजा मंडलम की स्थापना की गई। जनवरी 1942 में प्रजामंडलम ने इरिंजालाकुडा में पहली वार्षिक सभा आयोजित करने का फैसला किया। दीवान एडब्ल्यू डिक्सन ने प्रजामंडलम की गतिविधियों से राजा के प्रति वैमनस्य उत्पन्न होने की वजह से सभा पर रोक लगा दी और प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप अच्युतचंद सहित प्रजामंडलम के।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 5 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सम्मेलन आयोजित किया गया। अच्युतचंद और एस नीलकांडा अय्यर प्रजा मंडलम के प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में शामिल हुए। प्रजा मंडलम ने 1945 में चुनाव का सामना करने का निर्णय किया। अच्युतचंद को निर्विरोध रूप से कोचीन विधान परिषद के लिए चुना गया। अच्युतचंद नेमारा के प्रतिनिधि के रूप में त्रावणकोर कोचीन विधान परिषद के सदस्य भी थे।
स्वतंत्रता के उपरांत अझुतचंद ने अपना जीवन लोगों और लेखन के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें वी आर कृष्णन अझुतचंद आत्मकथा के लिए 2000 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13 मई 2004 को वी आर कृष्णन अझुतचंद का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन।
और अब खेल के मैदान की ओर चलते हैं सायरा। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कल दो मुकाबले हुए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया 47 रन से और चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के 6 पहलवानों ने क्वालिफाई कर लिया है, जिनमें 5 महिलाएं हैं। अमन सहरावत और निशा दहिया ने इस्तांबुल तुर्की में विश्व ओलंपिक कुश्ती पहन क्वालिफायर में भारत के कोटा की संख्या 6 तक पहुंचा दी।
इन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट जूनियर 30 वॉज इनॉग्रेटेड टूडे इन लखनऊ। अबाउट 125 इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑफ जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरी इंक्लूडिंग प्लेयर्स फ्रॉम यूक्रेन एंड द यूएस आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन। मेनी प्लेयर्स फ्रॉम यूपी आर ऑल्सो इन द फ्रे। And in some business news today, benchmark domestic indices, Sensex and NSE Nifty kicked off with market volatility, but by the end it managed to eke out marginal gains on the first trading session of the week. The 30-share BSE benchmark Sensex rose by 111 points or 0.15%, settling at 72,776, while Nifty witnessed a gain of 49 points and closed at 22,104. In forex market, rupee ended at 83.53 rupees against the US dollar today. And in intraday trade, Brent crude was trading at $83.04 per barrel.
और सायरा, अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनका आज है जन्मदिन, जयंती या फिर पुण्यतिथि। सायरा, ये धुन सुन के कुछ याद आ रहा है? जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम टीवी के आगे बैठ जाते थे जब ये धुन बजती थी।
यस, एब्सोल्युटली, नोबडी कैन फॉरगेट स्वामी ऑफ मालगुडी डेज व्हिच वाज स्पेंट बाय आरके नारायण।
और इसीलिए हम उनका जिक्र कर रहे हैं। आज प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार रासीपुरम कृष्णस्वामी नारायण स्वामी यानी आरके नारायण की पुण्यतिथि है। उनका निधन 13 मई 2001 में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में 3 सबसे महान उपन्यासकारों में वो गिने जाते हैं, आरके नारायण, मुल्कराज आनंद तथा राजा राव के साथ उनका नाम जो है लिया जाता है। उपन्यास तथा कहानी की विधा को अपनाते हुए आरके नारायण ने विभिन्न स्तरों तथा रूपों में मानवीय उत्थान पतन की गाथा को अभिव्यक्ति करते हुए गंभीर यथार्थवाद के माध्यम से रचनात्मक कीर्तिमान स्थापित किया। उनका पहला उपन्यास स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, ये जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, 1935 में प्रकाशित हुआ। और इस पुस्तक और नारायण की इसके बाद की सभी कृतियों में पृष्ठभूमि दक्षिण भारत की काल्पनिक शहर मालगुडी है और इसीलिए वो सीरियल बना था मालगुडी डेज।
यस, एंड इन फैक्ट ही हाईलाइट्स द सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीडे लाइफ ऑफ हिज कैरेक्टर्स। इसी वजह से मेरे ख्याल से जब आप रिलेट करते हैं कुछ चीजों से, हम लोग भी कैसे बचपन में छोटी छोटी शैतानियां करते थे,
वही
अपने फादर से डांट खाते थे, तो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी रिमेम्बर्स स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स।
कई पुरस्कारों के विजेता रहे आरके नारायण। भारत सरकार ने 1964 में पद्म भूषण और वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया। 1958 में उनकी कृति द गाइड के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उस पर फिल्म भी बनी और कितनी वो पॉपुलर हुई थी सायरा। रॉयल सोसाइटीज ऑफ लिटरेचर के फेलो और अमेरिकन अकादमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के मानद सदस्य भी रहे। नारायण को रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा 1980 में एसी बेसेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Today we are also remembering Anand Modak on his birth anniversary, an acclaimed Marathi film composer and music director, especially in Marathi cinema and Marathi theatre, who was known for his experimental style. His notable films include La Pandav, Chokat Raja, Tu Tithe Me, Natigoti and Harishchandraji Factory, Samantar and Dambij. In theatre, his notable compositions were for महानिर्वाणन, महापुर, खेलिया, रायगढ़ाला, जेवजा गेते, बेगम बारवे, चौखा चार राजा एंड मुक्ता। वी हैव अ कॉम्पोजिशन। और अब बात करते हैं अभिनेता और नाटककार बादल सरकार, जिनकी मृत्यु आज ही के दिन 2011 में हुई थी। निर्देशक और इन सबके अतिरिक्त रंगमंच के वो सिद्धांतकार थे। वो भारत के बहुचर्चित नाटककारों में से एक थे। सातवें दशक में पूरे देश में उनकी धूम मची थी। मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर और गिरीश कर्नाड के साथ बादल सरकार को मिलाने के बाद ही उस दौर का जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं रंग परिवेश संपूर्ण होता था। उनके नाटक हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में मंचित हुए और वे बांग्ला की परिधि से बाहर निकल समग्रता में भारत के नाटककार और भारतीय रंगमंच के अगुवा बने। उन्होंने रंगमंच को सीमित परिधि से बाहर निकाला, कम से कम खर्च में नाटक मंचित करना और आमजन के लिए नाटक को निःशुल्क उपलब्ध कराना उनका लक्ष्य बना। बादल सरकार के अनुसार शहरी रंगमंच पश्चिम से प्रभावित है और ग्रामीण रंगमंच पारंपरिक शैलियों से, और दोनों में ही जो अंतर वस्तु की कमी है। शहरी रंगमंच अपने प्रोसीनियम दायरे से बंधा है और ग्रामीण और पारंपरिक रंगमंच अपनी पुरानी शैलियों में, जिसमें प्रखर राजनीतिक चेतना का अभाव है। बादल सरकार आधुनिक रंगमंच को प्रोसीनियम दायरे से बाहर निकालकर लोगों के बीच गांवों और कस्बों तक ले गए। बादल सरकार के नाटक जुलूस, बांग्ला में जिसे मिशिल कहा गया, ने अखिल भारतीय स्तर पर 1974-75 के समय में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू हुए छात्र आंदोलन के समय जो है इसे मंचित किया और बहुत प्रभावित भी रहा। ये नुक्कड़ नाटकों को लोकप्रिय बनाने, उसे रंगमंच की समकालीन बहस के बीच लाने में उनका बहुत योगदान रहा। बादल सरकार को 1968 में संगीत नाटक अकादमी, 1972 में पद्मश्री, 1997 में संगीत नाटक अकादमी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Today we are also remembering Asit Sen on his birth anniversary, a director turned famous comedian in the Hindi film industry. And unka ek bada hi khaas hai kehte andaaz hai dialogue delivery ka. Let's listen to one of his dialogues.
Arre baap re baap re, arre kya hua, arre kisi ne pump pheka mujhe maarne ka, arre wo dekho, wo
hello police station,
Ramu, Gopal, Girdari,
चिल्लाओ नहीं, पुलिस आ रही है।
अरे पुलिस आते आते तो ये फट जाएगा, सब मर जाएंगे, चलो भाग चले। रामू, गोपाल, गिरधारी, अरे कहाँ से मर गए?
असित सेन अपने समय में के जो है अद्भुत हास्य कलाकार थे। हास्य सम्राट कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। करीब 250 फिल्मों में काम करने वाले असिदा को सौतेले भाई में उन्होंने एक तरीके से डायलॉग शुरू किया था कि मैं बोलता हूँ, फिर कैसा पॉपुलर हुआ वो उनका स्टाइल बन गया। अब जिक्र करते हैं मौलाना हसरत मोहानी का, उन्नाव उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। और इसके अलावा मौलाना हसरत मोहानी देश की आजादी की लड़ाई में सच्चे सिपाही होने के साथ साथ शायर, पत्रकार, राजनीतिज्ञ भी थे। उनका असली वास्तविक नाम था सैयद फजलुल हसन और उपनाम था हसरत।
And in fact, very few people know, or many maybe would know, that Hasrat Mohani was a great, great devotee of Krishna ji. और उन्होंने श्री कृष्ण की एजाज में बहुत सारी नज़में लिखी, शेर कहे, तो उसमें से कुछ पंक्तियां आपके सामने हैं। मथुरा की नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू इसी का, हर जर्राए सरजमी गोकुल, दारा है जमाले दिलबरी का, बरसाना और नंद गांव में भी बेकाए हैं जलवा हम किसी का, पैगाम हयात जाविदा था हर नगमाए कृष्ण बांसुरी का, वो नूर सियाह या की हसरत सर चश्मा फरोगे आगाही का।
देखिए क्या खूब है। और ऐसा है फिल्मों में जब गाने हिट होते हैं खूब सुना जाता है और हम भी गुनगुनाते हैं, लेकिन अक्सर उसे किसने गाया ये बहुत कम लोगों को पता होता है। पहले के दौर में भी ऐसे बहुत से गायक रहे जिनकी आवाज से सजा वो हर गाना जादू बखेर देता था। पुराने दौर के गायकों में से एक ऐसी ही मखमली आवाज के सिंगर थे, एक से एक बढ़कर बेहतरीन उन्होंने गाने गाए। हम बात कर रहे हैं मनहर उधास की।
उनका जन्म राजकोट गुजरात में 13 मई 1943 में हुआ था। मनहर के दो भाई पंकज और निर्मल उदास, पंकज उदास को हम सभी जानते हैं। कल्याण जी आनंद जी से जब वो मिले तो मनहर की आवाज बहुत उन्हें पसंद आई और उन्होंने कोरस सिंगर की टीम में मोहम्मद रफी के सामने शामिल कर लिया। जब मोहम्मद रफी ने पीछे से गा रहे एक आवाज सुनी तो उन्होंने कहा कि आगे आइए और इस बच्चे की आवाज में दम है, इसे कंतरा गाने के लिए दीजिए। इसके बाद फिल्म राजा साहब में मनहर को गाने का मौका मिला और बस वहीं से उनका करियर आगे बढ़ता चला गया।
हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते।
हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते,
तुम नहीं आते तो हम मर जाते।
और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो लवली निगम और सायरा मुज्तबा को अनुमति दीजिए। नमस्कार,
नमस्कार।